शुरू करेंगे क्लास नंबर 2। क्लास का नाम है क्रूस का रहस्य, सलीब द पेन, क्रूस का रहस्य, क्लास नंबर इसका भाग्य 1, क्लास नंबर 2 और इसका भाग्य 1। इसके दो भाग्य हैं क्रूस का रहस्य, जो हम 2 हफ्तों में करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह की सलीब के तरफ, क्रूस के तरफ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा, सलीब की मृत्यु के द्वारा, क्रूस की मृत्यु के द्वारा सारे संसार का बचाने वाला बना, है ना? सारे संसार का बचाने वाला बना या नहीं? प्रश्न ये उठता है अभी, प्रभु यीशु मसीह तो सारे संसार का बचाने वाला बना, लेकिन क्या वो खाली उनको बचाएगा जो ईसाई बनते हैं, या फिर सारी मनुष्य जाति को? कैसे कैसे? क्योंकि एक तरफ तो हम प्रचार करते हैं तौबा करो और बच जाओ, और दूसरी तरफ करते हैं बोलते हैं कि सारा संसार बच जाएगा। हाँ, जो तौबा करेगा वही बचाएगा, ये प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं?
जो तौबा करेगा वही बचाया जाएगा।
तो जब ये प्रश्न पूछा जाता है ना, हम अपनी बात को ही प्रश्न बना देते हैं। कैसे? एक तरफ बोलते हो सारे संसार को बचाने वाला बना, दूसरी तरफ बोलते हो जब तक उसको मानते नहीं तब तक बचाएगा नहीं। ये बाइबल नहीं बोलती है, ये बाइबल नहीं बोलती है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को बचाने के लिए शर्त नहीं रखी थी, थी ऐसी कोई शर्त? आप क्या हो? कौन सी जाति हो? आप अन्य जाति हो? मैं अन्य जाति हूँ, ठीक है? तो इन चीजों का ही विस्तार, इन चीजों की ही स्टडी हम कर रहे हैं, क्योंकि ईसाइयों में बहुत गलत धारणा और गलत शिक्षा फैल चुकी है, जिसका बीड़ा ब्रदर बलवीर हमने उठाया है कि सच्चाई क्या है लोगों तक लेके जाएंगे, आज आपके सामने भी प्रकट हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है और इस बारे में सच्चाई क्या है, यही प्रश्नों का उत्तर आज हमें मिलेगा इस क्रूस के रहस्य में। यह है एक रहस्य, एक भेद, जो वाकई नहीं पता है लोगों को। इसमें जो आपने बोला यही मैं बोलता था जब मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं जाना था ये, लेकिन हाँ ये भी यही बोलते थे, लेकिन जब पढ़ा बाइबल में तो फिर पता चला कि सच्चाई क्या है।
ऐसे सभी पादरी भी ऐसे बोलते हैं, जो तौबा करेगा वही बचाया जाएगा।
किद्दा किद्दा मतलब ये किद्दा हो सकता, मैनू समझ नहीं आई आज तक। चलो, सो एक क्रूस के रहस्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक वचन से शुरुआत करेंगे, यूहन्ना 12:32, यूहन्ना 12:32। यूहन्ना 12 उसका 32 आयत। पृथ्वी पर से चढ़ जाऊंगा तो सबको अपने पास। पंजाबी च पढ़ो जी।
पर जे मैं धरती उत्तों उच्चा कीता जावां तां सारिआं नूं अपणी वल खिंचांगा।
अगर मैं धरती से ऊंचा उठाया गया तो सबको अपनी तरफ क्या कर लूंगा? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? और इसमें एक चीज नोट कीजिए, प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और ये सब लोग कौन है? ये सब लोग कौन है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहला, क्या ये खाली क्रिश्चियंस हैं? दूसरा, क्या मनुष्य जाति है? तीसरा, क्या प्रभु यीशु मसीह सबको स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं? और अपनी तरफ खींचने का क्या मतलब है? क्या ये यहूदी हैं? कौन है? ये सोच कि प्रभु यीशु मसीह सबको स्वर्ग में ले जाएंगे, ये तो क्या बोलूं ब्रदर, मैं क्या बोलूंगा? आपने तो आज देख लिया कि स्वर्ग में जाने वालों की गिनती क्या है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ जी, सारे सारे नहीं जाएगा तो। लेकिन ये इस वचन का क्या मतलब है?
मैं सबको अपनी तरफ खींचूंगा, सबको, एक नहीं सभी को।
तो यहाँ पे तो नहीं लिखा है ईसाइयों को
नहीं आएंगे तो सभी मन थोड़े बहुत फिर आएंगे।
मन तो फिर आएंगे ही नहीं ये सब लोग,
थोड़े बहुत फिर आएंगे।
थोड़े बहुत भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ये तो सब लिखा है ना। ना मन फिराने वाले लिखा है, ना नहीं मन फिराने वाले लिखा है, ये तो सब लिखा है। लिखा है ना,
अपनी तरफ
जी। दादा माफ कीजिए, आप क्रिश्चियन ही है क्या? दादा आप अगर कैप उतार ले तो बहुत बढ़िया होगा वचन के अनुसार। आगे आ जाओ, आगे इधर आ जाओ। तो ऐसी सोच के प्रभु यीशु मसीह सबको स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं। प्रश्न, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर मैं धरती से ऊपर उठाया गया तो मैं सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। ये सब कौन है? सब मनुष्य कौन है? क्या ये ईसाई हैं? क्या ये पूरी मनुष्य जाति है? क्या ये यहूदी है? और क्या प्रभु यीशु मसीह सबको अपनी तरफ खींचने का मतलब ये है कि अपने स्वर्ग में ले जाएंगे? क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद ही अगली वचन में बताते हैं, अगले वचन में कि पढ़िए कि ये जो बात वो बोल रहे थे वो क्यों बोल रहे थे, उस बात का असली मतलब क्या था वो बोल रहे थे। पढ़िए पढ़िए 12:33, योहन्ना 12:33।
ऐसे कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वे कैसे मृत्यु से मरेगा।
ये जो बात उन्होंने कही थी कि अगर मैं धरती से ऊपर उठाया गया, ये बात प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसी मौत मरने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब की मौत तो धरती पे रहते हुए होती है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मौत कैसे हुई? उसको उठाया गया। जब सलीब पे किसी को उठाया जाता है ना तो उसको धरती से ऊंचा किया जाता है, फिर उसको, जैसे आपने देखा यह मूवीज में फोटोज आपके सबके घर में लगी हुई हैं कि उसको धरती से ऊपर उठा के सलीब पे क्या किया गया, लटकाया गया। तो ये जो बात प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बोल रहे थे, अभी ये सब लोगों को अपनी तरफ खींचने का क्या मतलब है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी मृत्यु के द्वारा, इस सलीब की मौत के द्वारा सब लोगों को अपनी तरफ क्या कर लूंगा, खींच लूंगा। ये है एक रहस्य जो आज हम समझेंगे, ठीक है। सो इस रहस्य को समझने के लिए हम शुरुआत में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की शुरुआत, है ना। तो शुरुआत से ही करेंगे ना, यीशु मसीह का जन्म और फिर इसका क्या मतलब है। तो एक जो गिब्राइल, गिब्राइल ही बोलते हैं ना पंजाबी हिंदी में, गिब्राइल इब्राइल नाम का जो दूत था जब मरियम के पास आया तो उसने कुछ आके बोला, क्या बोला मरियम के पास आके इब्राइल दूत? हाँ, उसका नाम यीशु रखना और हाँ और पढ़ो लूका 2:10, जो वचन दूत ने आके बोले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वक्त, वो हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या क्या वचन थे वो। तो जब दूत आया, दूत ने आके मरियम को क्या बोला? दूत ने मरियम को आके क्या बोला? मत डर, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ जो किसके लिए होगी? सारे लोगों के लिए होगी। अभी ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खबर सब लोगों के लिए खुशी का कारण कैसे हो सकती है? और ये सब लोग कौन है? ये सब लोग कौन है? अजी पंजाबी पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो। जी सारी प्रजा के लिए एक खुशखबरी। ये जो परमेश्वर ने दूत भेजा था प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वक्त, ये उसके शब्द थे। क्या ये आज खुशखबरी हम देते हैं लोगों को? चलो सो ये सब लोग कौन हैं? ठीक है, ये सब लोग कौन हैं? क्या ये खाली क्रिश्चियन, क्या ये खाली विश्वासी, क्या ये खाली यहूदी, और क्या ये पूरा संसार? तो इस प्रश्न का उत्तर का एक हिस्सा हम मत्ती 1:21 में पढ़ेंगे। मत्ती 1 अध्याय उसका 21 बाब। वे पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
यहाँ पे बोलो ब्रदर, पहले पढ़ा कि ये खुशखबरी का समाचार सबके लिए है, अभी आ गया कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। तो यीशु नाम का मतलब है बचाने वाला, यीशु नाम का मतलब है बचाने वाला। ठीक है, अभी कैसा बचाने वाला और कौन है जो उसके अपने लोग जिनको वो बचाएगा? क्या ये खाली यहूदी? क्या वो लोग इस संसार में जो खाली उस पे विश्वास करते हैं, या सारी मनुष्य जाति? दुविधा है ना, दुविधा बहुत बड़ी दुविधा ना। बंद कर दो प्लीज। सो किसके पास है इस प्रश्न का उत्तर, और प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा? सिस्टर ने बोला बहुत कंफ्यूजन का विषय है, एक तरफ वचन ही बोल रहा है नहीं? हम तो सब पापी हैं, है कोई ऐसा जो पापी नहीं है? 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 तो फिर सो इस प्रश्न का उत्तर क्यों ना हम यीशु से ही पूछते हैं, फिर से यीशु से पूछते हैं ना। चलो मरकुस 10:45,
क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दें।
एक और वचन पढ़ लिया अभी हमने, बोले बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए। तो ये है मेन वचन जो हमें उत्तर देगा अभी। लेकिन अभी तो उत्तर नहीं मिला आपको, जब तक मैं बोलूंगा नहीं उत्तर मिल जाएगा?
नहीं
मिलेगा ना। चलो हम करेंगे। इसमें दो शब्द इस्तेमाल हुए, एक तो बहुतों के लिए, दूसरा क्या था? छुड़ौती की रकम। क्या था? छुड़ौती की रकम, और छुड़ौती की रकम बहुतों के लिए अदा की। दो शब्द हैं। आज हमारी भाषा में बहुते क्या होते हैं? ज्यादा, लेकिन सारे नहीं है ना। सारा संतोषपुरा तो नहीं बोल सकते हैं ना, बहुते बहुता संतोषपुरा ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। बहुते क्या होते हैं? जो ज्यादा हो। सारे तो नहीं होते ना, है ना, सारे नहीं होते ना। बोलो हाँ या ना। अपनी भाषा में तो बहुतों का मतलब है बहुते, लेकिन सारे नहीं, सारे नहीं है ना। तो यह आप बोलते हो हाँ ये बहुतों का मतलब सारा संतोषपुरा है, मैं बोलता हूँ बहुत सा संतोषपुरा बदल चुका है, तो आप क्या समझोगे? मतलब सारा नहीं बदला है, सारा नहीं बदला है, लेकिन बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्राण भी बहुतों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिए। सो इसका क्या मतलब है, और ये छुड़ौती का क्या मतलब है? क्या प्रभु यीशु मसीह सचमुच बहुतों के लिए मरा, और यह सबके लिए मरा? इसीलिए शायद आज प्रचार किया जाता है सिस्टर कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उनके लिए मरा जो उसको स्वीकार करके ईसाई बनते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में बहुतों का मतलब है, बहुतों का मतलब क्या है? ज्यादा, लेकिन सारे नहीं। लेकिन बाइबल की भाषा में बहुतों का मतलब कुछ और है। क्या है? बाइबल की भाषा में बहुतों का मतलब कुछ और है। क्या है? पढ़ेंगे बाइबल में ही, क्योंकि बाइबल ही बता सकती है उसका मतलब, मैं तो नहीं बता सकता ना। तो पढ़ेंगे रोमियों 5:19, रोमियों 5:19।
क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे।
एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुते लोगों को अंडरलाइन कर लो। बहुते लोग क्या ठहरे? तो क्या सारे पापी नहीं है? सारे तो पापी हैं। तो बाइबल की भाषा में बहुतों का मतलब है सब। क्या? बाइबल की भाषा में बहुतों का मतलब है सब। अगर मैं बोलूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से संतोषपुरे के लोगों के लिए अपनी जान दी, तो बाइबल में क्या उसका मतलब होगा? प्रभु यीशु मसीह ने सारे संतोषपुरे के लिए अपनी जान दी, है ना। लेकिन कईयों को थोड़ा अचंबा होता है, नहीं ब्रदर सीधा सीधा वचन पढ़ाओ, प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी, फिर मानेंगे। चलो पढ़ते हैं 1 तिमोथी 2:5-6, साफ साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ौती की रकम सबके लिए दी। 1 तिमोथी 2:5-6, जिसने
अपने आप नू सबले प्रायश्चित करके दे दिता अते ओदी साकी अपने बेले सिर हुई।
हिंदी में भी पढ़ लीजिए 1 तिमोथियस 2:5-6।
क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही सिचुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिससे आपने आपको सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी।
देखो छुटकारे के दाम के लिए किसके लिए दे, कितनों के लिए दे दिया? सब के लिए दे दिया। साफ साफ वचन है, साधारण और साफ। ये है बहुतों का मतलब। सो अभी वही जो वचन हमने पढ़ा था मरकुस का, कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के लिए छुटकारे की कीमत, मतलब के सबके लिए छुटकारे की कीमत क्या कर दी? अदा कर दी। अभी प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए छुटकारे की कीमत तो अदा कर दी, लेकिन छुटकारे की कीमत का मतलब जानना भी बाकी है। ये छुटकारे की कीमत क्या होती है? इंग्लिश में रैंसम, रैंसम, रैंसम वर्ड, इसका क्या मतलब होता है? रैंसम वर्ड एक्चुअली आया था ग्रीक शब्द एंटी लुट्रॉन, ठीक है, एंटी लुट्रॉन, जिसका हिंदी और पंजाबी में ये मतलब है पूरी और बराबर कीमत, पूरी और बराबर कीमत। रैंसम, रैंसम, आर ए एन एस ओ एम, रैंसम, ग्रीक वर्ड एंटी लुट्रॉन, ग्रीक वर्ड एंट्री लुट्रॉन, जिसका मतलब है पूरी बराबर कीमत, एन इक्वल कॉरस्पॉन्डेंस प्राइस। सो इसका क्या मतलब होता है पूरी बराबर कीमत? मूवीज कितनों ने देखी हैं डाकुओं वाली? डाकुओं वाली मूवी क्या देखी है किसी ने? हैं, देखी है ना? उसमें क्या डाकू क्या करते हैं, हीरो के घर से उठा लेते हैं किसी को, और उठा लेते हैं, बोलते ये दे जा और ये ले जा, या उदाहरण के तौर पे पैसे लगा लो 5 करोड़ इसकी कीमत है, ले जाओ। एक पेन, जिस पे मान लो ये पेन है, ये पेन सिस्टम लिख रही है, इसकी पूरी बराबर कीमत, इस पे जो लागत आई वो है 2 रुपए। तो जो दुकान वाला वो उसके लिए पूरी और बराबर कीमत है 2 रुपए, 2 रुपए 1 पैसा इसकी बराबर कीमत नहीं है, 1 रुपया 99 पैसा इसकी बराबर कीमत नहीं है, पूरी बराबर कीमत कितनी है? 2 रुपए, ठीक है। सो इसीलिए एक कनाडा पिक्चर, 2000 से पहले की बात है, एक एक्टर था, उसको वीरप्पन ने उसको किडनैप कर लिया था और पूछा इतने पैसे दो और इसको छुड़ा लो, उसको बोल सकते हैं हम रैंसम, उसको बोल सकते हैं पूरी और बराबर कीमत, ठीक है। सो अभी प्रश्न ये उठता है कि अभी तो हमने देख लिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी बराबर कीमत के तौर पे सारे संसार के लिए क्या कर दिया? दे दिया। लेकिन पूछने वाला पूछेगा, एक यीशु इतने मर गए और इतने मरने जा रहे हैं, अभी भी पैदा हुए जा रहे हैं, पैदा हुए जा रहे हैं, सबके लिए चढ़ौती की बराबर कीमत कैसे हो सकती है? एक तरफ यीशु को बिठा दो और दूसरी तरफ सारे संसार को बिठा दो कांटे पे, तो बराबर होगा क्या? वो कीमत बराबर होगी? तो फिर कैसे, कैसे, ये जानना बहुत ही जरूरी है ना सबसे जरूरी बात में दम है या नहीं है, है ना? सो प्रभु यीशु मसीह एक इंसान इतने इंसानों के लिए बराबर कीमत कैसे हो सकते हैं, और कैसे वो सारे संसार का बचाने वाला बन सकता है, ये कैसे संभव है? इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का बचाने वाला है। पढ़ लीजिए 1 यूहन्ना 4:14, 1 यूहन्ना 4:14,
हमने देखा भी है, हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है।
भाई वचन में लिखा है, क्या करें अभी, वचन बोलता है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, लेकिन समझ नहीं आती कैसे कैसे एक प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का बचाने वाला हो सकता है। एक प्रभु यीशु मसीह तो अगर हम एक तरफ प्रभु यीशु मसीह को रखें और सब हम 20-25 जो हैं अगर एक साइड पे हो तो तब भी बराबर नहीं होगा ना कांटा। बराबर कीमत क्या है? पूरी बराबर कीमत है ना। सो फिर भी वचन में लिखा है तो भाई मानना तो पड़ेगा। चलो छोड़ो, नहीं समझ आया तो ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है बस। अगर कोई नॉन क्रिश्चियन आदमी हमसे बहस करना शुरू कर दे हम बचाने वाला तो बचाने वाला, बस तुम चुप कर जाओ अभी, तुम शैतान के तो पूछेगा यार बता तो दो कैसे, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दो कि एक यीशु मसीह, इतने लोग 2000 साल पहले उन्होंने जान दी, 2000 साल के बाद कितनी पीढ़ियां आई और कितनी मर गई, उससे पहले कितनी आई कितनी मर गई, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं सबके बचाने वाला है। यार बात कुछ हजम नहीं हुई तो उसको हाजमोला देना आपका काम है ना। यस, आपके पास होगा तो तब भी दोगे ना, तो वही आज आपको हाजमोला दे रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह तो एक इंसान के लिए जान दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह इतने इंसानों के लिए जान नहीं दे सकते, एक इंसान के लिए दे सकते हैं। वो कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, जिसके द्वारा हमें फायदा पहुंचे, ऐसा इंसान जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरे और उसका फायदा हमें पहुंचे या सारे मनुष्य जाति को पहुंचे, कौन हो सकता है वो ऐसा इंसान? आदम। हूँ मैं दसूंगा सिस्टर, चिंता मत कीजिए, अभी बता रहा हूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये सारा संसार किससे है, किसका वंश है ये? कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं आदम की संतान नहीं हूँ? है, हाँ बोलते हैं नॉन क्रिश्चियन क्योंकि उनको पता नहीं है, लेकिन वो भी आदम की संतान है या नहीं है? ये बात को हम झुठला सकते हैं? नहीं झुठला सकते ना, क्योंकि वचन में भी लिखा है, प्रेरितों के काम 17:26। छब्बीस चेलिया ने करता 17:26। एक ही मूल से, जो मूल को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो ब्लड लिखा है इंग्लिश में, ब्लड लिखा है, मूल को क्या बोल सकते हैं पंजाबी च पढ़े सिस्टर की है, पंजाबी में पढ़ी 17:26। देखो साफ साफ लिखा है मनुख जाति में जितनी जातियां हैं, सिख, हिंदू, मुसलमान, कोई भी जाति है, बुद्ध, ये वो जितनी भी है, सब किससे हैं? एक से। तो सारी मनुष्य जाति एक खून से है और सबका एक शारीरिक पिता आदम है। कौन बोल सकते हैं कि हमारा जो परदादाओं का पे बाप आदम था और माँ हवा, हवा भी कहाँ से निकली? आदम से ही निकली, ठीक है। सो इसलिए हम सब रिश्तेदार हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे कोई, सब क्या आपस में रिश्तेदार, क्योंकि हम सबका परिवार तो एक ही है ना। तो आदम तो VIP हो गया। आदम क्या है? सारी मनुष्य जाति का हेड यानी सर, और सारी मनुष्य जाति को बचाने वाला, तो सारी मनुष्य जाति का सब कुछ। सो वो सब कुछ है मनुष्य जाति का आदम। और ऐसा समझ लो कि अगर आदम को आदम सारी मनुष्य जाति को या आदम जीत जाए अगर आदम जीत जाए तो हम भी जीत जाएंगे, और अगर आदम हार जाए, अगर आदम ने पाप किया तो हम भी पापी बन गए जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, जो अभी आदम की स्थिति में आया बाहर, आदम की वाटिका में पाप और मौत की स्थिति में। इसका बड़ी सुंदर उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। अपने सबके परिवार हैं, हैं परिवार, परिवार में एक पति होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। पति को मान लो आप आदम, पत्नी को मान लो हवा और उनके बच्चे। अगर पति के काम अच्छे हैं तो फायदा किसको होगा? परिवार को होगा। और अगर पति के काम बुरे हैं, शराबी है, झगड़ालू है, बुरे काम करने वाला है, तो उसका भी इफेक्ट किस पे होगा? होगा या नहीं होगा? सो इसी तरह हुआ, आदम था सारी मनुष्य जाति का हेड, आदम था सारी मनुष्य जाति का पिता, आदम था इस पूरी मनुष्य जाति परिवार का बाप, था ना बाप। तो थोड़ा सा अभी हम इस स्टडी को हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करेंगे, अभी आदम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। आदम के बारे में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया था। परमेश्वर ने आदम को, सबको पता, आपने वचन पढ़ा हुआ है, वचन नोट कर लीजिए 1:26, यह उत्पत्ति 1:26। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपने जैसा
बनाया,
अपने जैसा क्या किया? बनाया। आदम संपूर्ण था, आदम क्या था? संपूर्ण था। लेकिन आज देखो, इतिहास की किताब आप पढ़ते हो, 10वीं तक कौन पढ़ा है? 10 किस किस ने किए हैं? और इतिहास में क्या बोलते हैं वो, आदम कहां से आया? पहले आदम बंदर था, फिर धीरे धीरे सीधा हो गया, फिर पूछ निकल गई और इंसान बन गया। देखो कैसा अंधेरा छाया हुआ है इस धरती पे, अंधकार, झूठ। परमेश्वर का वचन बोलता है उसने उसे अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया। लेकिन उस वक्त जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम संपूर्ण था, आदम में पाप नहीं था, आदम पे मौत नहीं थी। आदम पे मौत थी? हम पे तो पैदा होते ही मौत होती है। बच्चा रोता क्यों पैदा होता है? यही कि मैं आ गया पाप की दुनिया में मरने के लिए, मैं क्योंकि मेरा जन्म आज हुआ है, मुझे पता है आज से चलो 20 साल 50 साल मरना ही है। पैदा हुआ हूं किसके लिए? मरने के लिए। इसलिए बच्चा कभी भी कोई भी हंसते नहीं आता है, सब रोते ही आते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया बिना मौत, संपूर्ण, उसमें कोई कमी कोई खामी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने एक शर्त रखी कि अगर तूने उस पेड़ का फल खाया तो तू मर जाएगा। परमेश्वर ने एक, हाँ, संपूर्ण का मतलब पूर्ण, हाँ वही, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें पाप नहीं है, जिसमें पवित्र था, धर्मी था, और कोई मतलब के ऐसी कोई मृत्यु का दंड नहीं था। तो परमेश्वर ने एक शर्त रखी कि अगर तू इस शर्त की को पूरा करे, अगर मेरी दी हुई आज्ञा को माने तो तू हमेशा जीवित रह सकता है, कभी नहीं मरेगा। लेकिन अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या होगा? तो तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। परमेश्वर ने साफ साफ उसी वक्त उसको दंड भी बता दिया, बॉस अगर इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो तू मरेगा, तो तू क्या होगा? मर जाएगा। तो अभी पाप क्या होता है? पाप परमेश्वर की आज्ञा का उल्ट, उसको तोड़ना। वचन में पढ़ लो पहला योहन्ना तीन का चार। जो भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, जो उसको तोड़ता है वो क्या करता है? पाप करता है। और पाप का दंड क्या है? पाप का दंड मौत। तीन चार पाप क्या है? शर्रा का उल्ट, व्यवस्था का विरोध। ठीक है, तो इसलिए आदम ने क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तो पाप कर दिया, तो मृत्यु का दंड आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आदम उस दिन मरा? आप बोलोगे नहीं, आदम उस दिन आत्मा में मर गया। मैं वो सुनना नहीं चाहता हूँ भाई। सब पता था परमेश्वर को, पता था मैं आदम बनाऊंगा, परमेश्वर को पता था ये पाप करेगा, परमेश्वर को पता था मैं ये मृत्यु में जाएगा, परमेश्वर ने उसकी छिड़ौती का भी प्लानिंग सबसे पहले की हुई थी। गुड, परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी? क्लास नंबर 11, परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी? क्लास नंबर 11 क्यों? क्योंकि अभी मैं अगर वो बताना शुरू कर दिया तो हमारा विषय बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ऐसा नहीं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्यों किया परमेश्वर ने ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वचन से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये साफ था कि परमेश्वर ने उसको, तो ये साफ था परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा सा पहले आदम और हवा के जीवन में बारे में जानते हैं। आदम और हवा के जीवन इतना खुशहाल, इतना शांतिपूर्वक, इतना बढ़िया था कि आज हम उसकी उसको महसूस भी नहीं कर सकते। उनको ना तो खाने की कोई टेंशन थी, आज हमारे शाम को घर में क्या पकेगा, ना उनको सर ढकने की टेंशन थी, अरे बारिश आ जाएगी हम कहाँ सोएंगे, ना उनको किराए देने की कोई टेंशन थी, ना उनको नौकरी की कोई टेंशन थी, ना उनको पैसे का कोई डर था, हमें कल के लिए बचाना था। ऐसा हर एक डर जो आज हमारे जीवन में है, आदम और हवा को ऐसा कोई डर नहीं था। अगर आपको ऐसा जीवन दिया जाए तो हंस के ले लोगे ना, अरे वाह। और ऊपर से छोड़ो, खाने के लिए आपको ऐसे फ्रूट जो आपने देखे ही नहीं है, ऐसा कोई कौन सा ऐसा फ्रूट था जो अदन की वाटिका में नहीं था? आदम और हवा को क्या करना था? खाली सिर्फ हाथ बढ़ा के तोड़ना था और अगर आपको ऐसा जीवन मिले तो आप जाओगे या नहीं? भागेंगे। अरे यार भाग में चलो, बस छोड़ो सब टेंशन वेंशन, भाग जाओ। तो ऐसा जीवन था आदम और हवा का। आदम और हवा ने कितना बढ़िया समय बिताया होगा, थोड़ा समय था लेकिन वो ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े समय बाद उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का जब उल्लंघन किया तो अदन की वाटिका से क्या कर दिए गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ कैसे? आज ज्यादा सिस्टर्स हैं इसलिए मुझे कुछ थोड़ी देर बाद मैं बोलने वाला हूँ, ऐसा ना हो मुझे मारना शुरू कर दें आप लोग। तो क्या हुआ, एक दिन ایک دن ہوا اکیلی تھی, ہوا کیا تھی
اکیلی,
آدم نہیں تھا ساتھ میں, تو اس نے کیا دیکھا, کیا دیکھا کہ ارن جی ادھر دیکھیے آپ ذرا میری طرف, ٹھیک ہے, ایک دن ہوا اکیلی تھی اور آدم نے کیا کیا, سوری ہوا نے کیا کیا, ہوا نے کیا دیکھا, سانپ اس پیڑ سے کھا رہا ہے جس پیڑ سے پرمیشور نے کھانے کے لیے
منع کیا.
لیکن آج یہ بھی بتا دوں, آج لوگوں کو لگتا ہے جو پیڑ تھا وہ یہ تھا کہ آدم اور ہوا نے, یا ایک عورت جو اور مرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ پاپ ہوتا ہے, نہیں, سچ مچ وہاں پہ پیڑ تھا جس کا پرمیشور چاہتا تھا کہ یہ آجا کا پال. جب اس نے دیکھا کہ یہ سانپ اس پیڑ سے کھا رہا ہے تو ہوا بولی چلو آج لیتے ہیں مجھے, دیکھو یہ مرنے جا رہا ہے, پرمیشور نے ہمیں بولا تھا یہ پیڑ سے مت کھانا, جو کھائے گا تو میں دیکھتی ہوں سانپ کیسے مرتا ہے. تو یہ تھی آزمائش, ہوا بیٹھی دیکھا دیکھا دیکھتی رہی سانپ کھاتا رہا, ہوا دیکھتی رہی سانپ کھاتا رہا, ہوا دیکھتی رہی سانپ, سانپ مرا. ہوا کے من میں پرشن, پرمیشور نے تو بولا تھا کیوں نہیں مرا یہ. جب ایسی بات ہوئی تو اس وقت شیطان کی انٹری ہوئی, ایسا بولا تھا پرمیشور نے, دیکھو تمہارے سامنے ہوا نے کھایا, بعد میں آدم کو بھی کھلایا. کئی بولتے نہیں آدم نے پاپ کیا, نہیں, آدم نے تو سوسائڈ کیا تھا, اس دھرتی کی پہلی آتم ہتیا, پڑھیں گے ابھی سب دھیان سے, ٹھیک ہے. تو چلو دیکھتے ہیں اتپتی 3:1, تو دیکھو ابھی سانپ بولا کیا, سانپ نے بات کی کیا, بولنے والے سانپ آپ نے دیکھے ہیں کیا, ہاں سنا ہے ایسا کبھی, بولنے والے سانپ بھی ہوتے ہیں, تو یہ سانپ کیسے بولا, مطلب شیطان سانپ میں گھس کے بول رہا تھا, شیطان دور سے بھی تو بول سکتا تھا نا, بولنا دو طرح کا ہوتا ہے,
یہی تو آج ہم سنتے آ رہے ہیں پادری, شیطان بولا,
ہم نے پکچر پہ دیکھا تھا تو اس پہ وہ سانپ بول رہا تھا, ہوا ہوا سے بول
رہا, وہ پکچروں میں دکھا سکتے ہیں, پکچروں میں کچھ بھی دکھا سکتے ہیں, پکچروں میں آدمی کو عورت اور عورت کو آدمی بنا دیتے ہیں, کیا کریں ابھی پکچریں ہیں ہی ایسی ہیں. تو بولنے والے سانپ نہیں اس دھرتی پہ پیدا ہوتے, بولتے ہیں وام 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 بولتے ہیں لیکن اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے, سمجھ سکتے ہیں. سو بولنا دو طرح کا ہوتا ہے, کتنے طرح کا بتاؤ, بول کے دکھاؤ مجھے دو طریقے سے, تم لوگ بتاؤ دو طرح سے بول کے دکھاؤ, دو طریقے کا ہوتا ہے بولنا, ہاں بولنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو ایک جیسے میں بول رہا ہوں, نہیں بولنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو زبان کے ساتھ, ایک تو آپ جو بولتے ہو جیسے بولتے ہو, ایک کاموں کے ساتھ, کام کے ساتھ بھی بولنا ہوتا ہے, بولتے ہیں نا انگلش میں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز, کام شبدوں سے زیادہ اونچا بولتے ہیں, ادھارن کے طور پہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. سو میں دسن لگا ادھارن, उदाहरण बताने जा रहा हूँ, अभी बोलना कैसे होता है। एक मिनट बताता हूँ आपको, बताता हूँ। जब उसने उसको खाते देखा ना, तब ऐसा हुआ। एक मिनट में बताता हूँ, पहले ये उदाहरण बता दे बोलने तरह का, दो तरह का। आपके पड़ोस में एक इंसान रहता है, वो बातचीत नहीं करता है, कुछ नहीं करता है ना, बहुत अच्छा है, अपने समय से काम पे जाता है, समय से काम में वापस आता है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई उसकी ऊंच नीच नहीं है, ना शराब पीता है, ना गाली निकालता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मेरा पड़ोसी बहुत है? उसको शब्द बोलने की जरूरत पड़ी? आपको उसको जानने की जरूरत पड़ी? तो उसके काम ज्यादा ऊंचा बोले या मेरी जुबान ज्यादा ऊंची बोलेगी? ठीक है, सो ये होता है दो तरह का बोलना। सो सांप ने जो काम किया, सांप ने जो बोला अपने काम के द्वारा, काम क्या किया? जब वो फल खा रहा था, उसके फल खाने से, पता मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूं, मैं एंड में चलो अपनी गवाही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं बेंगलोर में उस वक्त जॉब कर रहा था, तो हमारे घर में बहुत बड़ा एक दुर्घटना घट गई, दुर्घटना का पहाड़ टूट पड़े, ठीक है। तो मैं ऐसे खड़ा था शाम को ऑफिस से निकल के, और सोच रहा था मसीह में आके मैंने क्या हासिल किया। सो कई बार आप अपनी अपने आप से पूछते हो, आप क्यों कर रहे हो ये, ऐसा क्या है वो, तो वो होता है बोलना अंदर से। तो शैतान ने जब ऐसा किया, तो शैतान ने हवा के मन में ये प्रश्न डाल दिया कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें ये खाने से मना किया है? तो उसके उत्तर में, फिर उसके उत्तर में, उसने सांप को उत्तर नहीं दिया, उसने अपने मन में दोहराया। शैतान अभी उसकी कॉन्शियंस से बातें करना शुरू कर दी उसने। शैतान ने थॉट डाल दी, शैतान ने सोच डाल दी, शैतान ने उसके मन में आजमाइश डाल दी। हैं? ठीक है, ठीक है, ऐसा परमेश्वर ने बोला था। आगे पढ़ लो 3:2-3।
इसने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, तो जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे।
अभी इस बात को अंडरलाइन करो, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको, परमेश्वर ने ये बोला था? परमेश्वर ने क्या बोला था? यही बोला था। पढ़ लो जरा उत्पत्ति 2:16-17। हाँ, पढ़िए। यही तो, सुनने में और बाइबल में बहुत अंतर है।
वाटिका में सब वृक्षों का फल बिना खटक खा सकते हो, परंतु भले जा बुरे फल ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन